मंगलाचरण के साथ गुमट सार का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के अंतर्गत 20 प्ररूपणाओं में संज्ञा प्ररूपणा चल रही है, जो पांचवी प्ररूपणा है। इस संज्ञा प्ररूपणा में आपने जाना कि चार भेद हैं संज्ञाओं के, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तीन संज्ञाओं के बारे में आप जान चुके हैं, अब आज चौथी परिग्रह संज्ञा में पहुंचना है। परिग्रह के नाम से ही सब लोग परिचित रहते हैं और उस परिग्रह संज्ञा के रूप में परिग्रह को जानने का प्रयास करेंगे। उवियरण दंशनेणयावियरण
दंशनेणया
तस्वजोगेण मुच्छिदाय
तस्वजोगेण मुच्छिदाय
लोहसुदीर्णाय परिग्रहे जाय दे सन्ना
परिग्रहे जाय दे सन्ना।
सामूहिक रूप से गाथा पढ़िएगा। उवियरण दंशनेणया तस्वजोगेण मुचिदाय लोहसुदीर्णाय परिग्रहे जाय दे सन्ना। उपकरण दर्शनेन च तस्योपयोगेन मूर्छिताय च लोभस्योदीर्णया परिग्रहे जायते संज्ञा। सभी संज्ञाओं में चार कारण माने हैं। हर संज्ञा के साथ चार प्रकार के अंतरंग और बहिरंग निमित्त हैं, जिनके निमित्त से वे संज्ञाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो परिग्रह संज्ञा में कहा कि सर्वप्रथम कहा है कि उवियरण दंशनेणया माने उपकरणों के देखने से। तो कौन से उपकरण? जो भोगोपभोग की सामग्री के उपकरण हैं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, धन धान्य हो, रुपया हो या कपड़े हो, इन सब को जो देखा जाता है, यानी इन बाह्य पदार्थों के देखने से भी उनको खरीदने की, लेने की, संग्रह करने की इच्छा हो जाती है। तो नंबर एक कारण यह है कि इन बाह्य पदार्थों को, जो भोगोपभोग की सामग्री है, उनको देखने मात्र से परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा हो जाती। तो पहला कारण परिग्रह संज्ञा में ये है। दूसरा कारण है, जो पहले में बहुत चीजें अपने पास भोगोपभोग सामग्री थी, अच्छा अच्छा भोजन किया था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे, अच्छा मकान बंगला गाड़ी सब कुछ थी, उनको याद कर लेने से या फिर उनकी कथा सुनने से भी मन में लालसा उत्पन्न होने लगती है। फलाने राजा के पास इतना सारा वैभव था तो उसके लिए अपनी लालसा जगने लगती है। तो ये परिग्रह संज्ञा का दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण है कि जो मूर्छा रूप परिणाम के निमित्त से परिग्रह के अर्जन की तीव्र भावना, यानी अति ग्रद्धि, उसके प्रति आसक्ति जो उत्पन्न होती है, वह कारण है। जैसे कहते हैं ना, मूर्छा परिग्रह, कोई गरीब भी है लेकिन धन को संग्रह करने की इच्छा उसके अंदर है, मूर्छा है, आकांक्षा है, आसक्ति है, तो उसको भी परिग्रह का दोष लगता है। तो ये तो तीन कारण हुए। और चौथा कारण है कि लोभ कर्म का तीव्र उदय जब आ जाता है, तो व्यक्ति कोई भी चीज देखता है तो उसको लेने की, अपने पास रखने की, संग्रह करने की, खरीदने की इच्छा हो जाती है। तो लोभ कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा होने से, इन चार कारणों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। तो भव्यात्माओं, परिग्रह हर किसी के पास है संसार के अंदर, लेकिन कहा है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो परिग्रह के बाह्य अंतरंग सब भेद हैं उनको पूर्ण रूप से त्याग करते हैं मुनिराज। आप सब परिग्रह का प्रमाण कर सकते हैं, परिग्रह का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। अहिंसा और अपरिग्रह जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत माना गया है, तो वह अपरिग्रह संतों के अंदर पूरी तरह से, जो वस्त्र मात्र का भी त्याग करके दिगंबर होते हैं, वे पूर्ण त्यागी होते हैं परिग्रह के, इसलिए उनके अपरिग्रह महाव्रत होता है। और परिग्रह की सीमा करना, प्रमाण कर लेना, ये श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए, पुरुष और स्त्रियों के लिए परिग्रह प्रमाण नाम का अणुव्रत कहा जाता है। तो खैर, यहाँ पर तो परिग्रह संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में है, तो उसके अंतर्गत भी जानना है कि परिग्रह का जब प्रमाण कर लेंगे तो आसक्ति कम हो जाती है। जैसे आपने अगर नियम कर लिया, आज हमारे को एक बार भोजन करना है, तो अगर दूसरे समय भी कोई कहे पानी पी लो, भोजन कर लो, तो आपको नहीं करना है ना, तो आप कहते नहीं, मेरा तो त्याग है, गौरव के साथ कहते हैं। अर्थात वह आसक्ति जो शाम को भोजन करने की प्रतिदिन की थी, जिस दिन त्याग कर दिया अष्टमी या चतुर्दशी को, तो उसके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। और आसक्ति का कम होना वह परिग्रह प्रमाण है, या पूर्ण आसक्ति का त्याग कर देना आप परिग्रह होता है। तो आपको ये जान लेना है कि एक इंद्री से लेकर पांच इंद्री तक के सभी प्राणियों में परिग्रह संज्ञा रहती है। अब आप कहेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, लट बिच्छू ततैये वगैरह, तो उनके परिग्रह कैसे होता है, उनके पास तो विचारों के पास कुछ नहीं होता। नहीं, उनके भी परिग्रह संज्ञा है। आप देखो, किसी पेड़ की जड़ें, बहुत सी बार सुनने में आता है कि कहीं पर कोई पेड़ है और उसके थोड़ी सी दूर पर पास में कहीं धन गड़ा हुआ है, तो पेड़ की जड़ें धन तक चली जाती है। जब खुदाइयां हुई ऐसी, तो पाया गया कि पेड़ की जड़ धन तक पहुंच गई, तो ये अव्यक्त रूप से परिग्रह संज्ञा है। वो संज्ञा हमें दिख नहीं रही है, लेकिन संज्ञा उनके अंदर है, सत्ता में है, उदय में है। इसलिए वे बिना बोले भी, चींटियों को आप देखते हैं जब बिलों में जाने लगती हैं, जहां शक्कर है वहां से ला लाके और अपने बिल में लाके संग्रह कर लेती हैं। तो ये अनादिकालीन अविद्या के, परिग्रह के, अज्ञानता के संस्कार हैं, जो वे संस्कार बिना मन वाले जीव के भी यहाँ काम करते हैं। और सब लोग अपने संज्ञा को वृद्धिंगत करने के लिए, संज्ञा की पूर्ति के लिए उन साधनों को जुटा लेते हैं। एक भौंरा है, चाकर के पुष्प के अंदर से पराग लाता है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए ही ना, अपने आहार संज्ञा की तृप्ति के लिए ना, तो इसी प्रकार से हर जीव के अंदर चारों संज्ञाएं हैं। वो आहार भी करता है, भय भी है, मैथुन भी उसके अंदर है, और परिग्रह संज्ञा भी उसके अंदर है। तो मनुष्यों के लिए ही कहा कि परिग्रह संज्ञा वैसे दसवें गुण स्थान तक मानी गई है, तो वो उपचार से है। आप सोचो कि सातवें गुण स्थान के बाद तो निर्विकल्प ध्यान की अवस्था आ जाती है, वहां परिग्रह आदि संज्ञाएं किस प्रकार से हो सकती है। तो जिनागम के अंदर कहा गया कि वह परिग्रह संज्ञा उपचार से दसवें गुण स्थान तक है, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय पाया जाता है। जब कर्मकांड को पढ़ते हैं, गोमट सार कर्मकांड को, तो उसमें आया है कि दसवें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है, और दसवें गुण स्थान के अंत में जाकर के सूक्ष्म लोभ नष्ट हो जाता है। इसलिए दसवें गुण स्थान तक उसका जो उदय है, उसके कारण उपचार से परिग्रह संज्ञा दसवें गुण स्थान तक मानी गई है। छठे गुण स्थान से आगे इन संज्ञाओं की यदि हम प्रवृत्ति मानेंगे, तो ध्यान की अवस्था नहीं होगी। यानी प्रवृत्ति रूप में नहीं है, लेकिन सत्ता के रूप में है, इनका सूक्ष्म रूप में उपचार से उदय माना जाता है। इसलिए मात्र कर्मों के उदय आदि अस्तित्व से ही इनका अस्तित्व दसवें गुण स्थान तक माना गया है। तो आज आप सब लोग चौथे पांचवें गुण स्थान में हैं, मुनिजन छठे सातवें गुण स्थान में रहते हैं, तो परिग्रह संज्ञा तो सबके है, लेकिन परिग्रह के प्रति अति आसक्ति नहीं रखना, अति ग्रद्धता नहीं रखना, मूर्छा नहीं रखना, ये परिग्रह संज्ञा से थोड़ी थोड़ी निवृत्ति को बताता है। अरे चक्रवर्ती से ज्यादा भोग भोग सामग्री किसके पास होगी, जहां छह खंड का राज्य है, जहां 96,000 रानियां है, जहां इतना वैभव, असीमित वैभव है, उस चक्रवर्ती के वैभव में रहते हुए भी चक्रवर्ती अनासक्त होकर के रहते हैं तो वे मर करके और स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आसक्ति है परिग्रह के प्रति, मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ऐसा भी खरीद लूं, इसके पेट भी भर लूं, पेटी भी भर लूं और सात पीढ़ियां तक मेरी चलती चली जाए, तो ये आसक्ति, अगर किसी के पास धन नहीं भी है लेकिन आसक्ति है, मूर्छा है, ग्रद्धता है, तो उसको परिग्रह का दोष लगता है। इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण आपका आज परिपूर्ण होता है, इसका आपको अभ्यास करना है। और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं को जान करके हमें इन संज्ञाओं के प्रति अनासक्त होना है, ताकि संसार में रह करके भी कर्म बंध कम से कम हो। लोग कहते हैं आज कि जैनियों के पास बड़ा पैसा रहता है, अरे भाई क्यों रहता है, आप एक बात ध्यान रखना, जो अणुव्रत ले लेते हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह का प्रमाण कर लेते हैं, ऐसा देखा गया कि अणुव्रतों को लेने के बाद व्यक्ति के धन की खूब वृद्धि होती है। तो इसलिए वृद्धि नहीं होती है कि आप उसका दुरुपयोग करें, वृद्धि हुई है तो जो अणुव्रति है वो उसमें दोष ना लगा करके और उस परिग्रह रूप जो धन मिला है उसका सदुपयोग करता है। देखो सेठ पूनम चंद घासीलाल का जैसे ही परिग्रह प्रमाण थोड़ा बढ़ने लगा, उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के संग को सम्मेद शिखर की यात्रा कराई। आज भी सारे लोग अपने धन में से ही दान दे करके तीर्थों का उद्धार करते हैं, विकास करते हैं। तो परिग्रह रहते हुए भी कहते हैं, बहु धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपकार सो। धन बुरा है लेकिन यदि वो परोपकार में लगाया जाता है, किसी असहाय की सेवा की जाती है, किसी दुखी का उपकार किया जाता है, किसी तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक विकसित करने में योगदान किया जाता है, तो आप समझो कि आपका वह धन पुण्योपार्जन में कारण बन जाता है। ऐसा इन संज्ञाओं को जानने के पश्चात हर संज्ञा के साथ आप ये भी लगाना कि हम इन संज्ञाओं से समन्वित हैं, लेकिन इन संज्ञाओं से हम दूर रह करके और संज्ञा रहित बनने के लिए भी आगे हम उपाय करेंगे। तो आज ये प्रकरण पूरा हुआ है, कल से हम आपको मार्गणा में ले चलेंगे, जो 14 मार्गणाएं हैं, 20 प्ररूपणाओं में 5 प्ररूपणाओं ये हुई हैं और उसके बाद में 14 मार्गणा, तो 14, 5, 19 और उसके बाद उपयोग मार्गणा आएगी। तो इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन आप इस गोमटसार के अंदर पढ़ेंगे।